इशिका और अभिमन्यु इस वक्त मर्चेंट फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। बाकी फैमिली भी वहीं पर मौजूद थी। कोई भी उनके साथ बैठकर डिनर करने में खुश नहीं था, फिर भी गौतम के मजबूर करने पर उन्हें वहां बैठना पड़ रहा था। इशिका वहां बैठकर आराम से खाना खा रही थी, जबकि बाकी लोग आपस में बहस करने में लगे हुए थे। इस बीच इशिका के इनिशियल टेस्ट की कुछ रिपोर्ट आ गई थी। रिपोर्ट देखने के बाद गौतम मर्चेंट के चेहरे पर अचानक से चमक आ गई, जबकि पहले वो उन लोगों के बहस करने की वजह से थोड़े इरिटेट नजर आ रहे थे। गौतम के चेहरे पर चमक आने का मतलब था कि इशिका की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उनके एक्सप्रेशंस देखते ही आदित्य और अर्पित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, तो वहीं राधिका के चेहरे पर डर के भाव थे। अभिमन्यु इस मामले में कुछ बोलता उससे पहले गौतम ने उसकी तरफ देखते हुए हल्का मुस्कुराकर सिर हिलाकर कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर राजवंश, पता नहीं था कि इतनी अच्छी खबर इस तरह मालूम होगी। मुझे आपकी गुड न्यूज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है मिस्टर मर्चेंट, अभिमन्यु ने जवाब दिया। वो वहां से उठकर जाने को हुआ तभी गौतम मर्चेंट ने सख्त आवाज में कहा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है मिस्टर राजवंश, पूरी बात सुनकर जाओगे तो इसी में हम सबकी भलाई है। अपनी बात खत्म करके गौतम ने अभिमन्यु को बैठने का इशारा किया। ये बात नहीं थी कि अभिमन्यु को गौतम मर्चेंट से किसी बात का डर था, फिर भी वो वहां बैठ गया। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में कहा, मुझे पहले ही पता था यही सब होने वाला है, तभी मैं इन सब टेस्ट वगैरह के खिलाफ था। तुम्हें एटलीस्ट जाने से पहले मुझे बता देना चाहिए था, जरूर तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई होगी और अब ये तुम्हें उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए ब्लैकमेल करेंगे। नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, गौतम ने जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुककर आगे बोले, किसी बड़े एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कुछ एडिशनल दवाइयां देनी है जो अंजलि चौहान को दी गई थी। हम पूरे 9 महीने तुम्हारी प्रेगनेंसी को मॉनिटर करेंगे। जैसे ही गौतम की बात खत्म हुई, खाना खाते हुए इशिका के हाथ रुक गए, तो वहीं अभिमन्यु भी हैरानी से उनकी तरफ देख रहा था। राधिका भी कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो गई थी। कुछ ऐसा ही हाल आदित्य और अर्पित का भी था। उन सबके चेहरों को देखकर गौतम ने कहा, क्या तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैंने नयाने क्या कह दिया? बधाइयां दी तो थी मिस्टर राजवंश को, हाँ ये लड़की माँ बनने वाली है। इशिका की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर वहां खुशी के बजाय एक अलग ही सन्नाटा छा गया था। वहीं इशिका समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या रिएक्ट करे, वो इन सब चीजों के लिए तैयार भी नहीं थी। अभिमन्यु के चेहरे पर भी कोई खास एक्सप्रेशन नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो दोनों खुश नहीं थे, लेकिन अचानक मिले इस खुशी को वो दोनों कुछ पल के लिए एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों के बने हुए चेहरे देखकर गौतम ने सिर हिलाकर कहा, अजीब बात है, इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी तुम दोनों के चेहरे पर मायूसी क्यों छाई हुई है? इससे अच्छा हमारा टाइम था, जो कम से कम खुशखबरी सुनने पर एक दूसरे का मुंह तो मीठा करते थे। अब ये मत कहना कि तुम दोनों बच्चों के लिए तैयार नहीं थे। मैंने सुना है तुम दोनों की शादी को 2 साल से भी ज्यादा टाइम बीत चुका है, इतना टाइम काफी होता है। प्लीज डैड, कम से कम आप उनके पर्सनल मैटर में तो बीच में मत बोलिए, आदित्य ने उन्हें टोका और फिर अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों चाहो तो अपने कमरे में जाकर बात कर सकते हो, मैं खाना भिजवा दूंगा। अभिमन्यु ने उनकी तरफ हाँ में सिर हिलाया और फिर इशिका का हाथ पकड़कर उसे ऊपर कमरे में लेकर गया। रूम के अंदर आते ही इशिका और अभिमन्यु का ध्यान सीधे सीसीटीवी कैमरे की तरफ गया, जो इस वक्त बंद कर दिया गया था। कैमरे को बंद देखकर इशिका ने कहा, जरूर आदित्य मर्चेंट ने करवाया होगा, इस फैमिली में मुझे वही इंसान नॉर्मल लगता है, चलो उसे हमारी प्राइवेसी की कुछ तो रिस्पेक्ट है। इतना कहकर इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु खोया हुआ लग रहा था। इशिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, देखो मैंने अपने ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करवाए हैं, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्याना नहीं लगा है तो यह अच्छा मौका है जब मैं तुमसे खुलकर बात कर सकूं। मैं यहां आई थी तब मैंने दिशांक से कुछ ट्रैकर मंगवाए थे और वो मैं यहां सेट कर दिए हैं। उम्मीद है कि अब पृथ्वी और दिशांक हम तक पहुंच जाएं। इशिका इस वक्त अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात ना करके प्लान बता रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था अभिमन्यु उसकी बात सुनकर भी नहीं सुन रहा हो। इशिका उसे कुछ पूछ पाती उससे पहले अभिमन्यु ने उसे कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया था। वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलने के बारे में सोचना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ की जाए। अभिमन्यु की बात सुनकर इशिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने नजर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखकर कहा, तुम तो मुझसे गुस्सा थे ना, क्योंकि मैं तुम्हें बिना बताए चली गई थी। हाँ गुस्सा होना तो चाहिए, लेकिन तुम नहीं जाती तो इतनी बड़ी गुड न्यूज़ के बारे में पता नहीं चलता। तो मुझे इतनी बड़ी खुशी दे रही हो तो मैं इस छोटी सी बात को इग्नोर कर सकता हूँ, अभिमन्यु ने जवाब दिया और फिर उसकी नोज़ पर हल्का सा किस कर लिया। सॉरी, वो मैंने मर्चेंट फैमिली के सामने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। मैं खुश हूँ ये न्यूज़ सुनने के बाद कि हम दोनों पेरेंट बनने वाले हैं। दादी यहाँ होती और सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलता तो वो बहुत खुश होती, आखिर उनकी इतनी बड़ी तमन्ना पूरी होने जा रही है, इशिका ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, हम थोड़े ही दिनों में वहां पहुंच जाएंगे, तब दादी को भी ये न्यूज़ पता चल जाएगी। वैसे सच में तुमने ट्रैकर सही से सेट किए हैं ना? अभिमन्यु ने भौहें उठाकर पूछा, जिस पर इशिका ने हाँ में सिर हिला दिया था। इशिका और अभिमन्यु एक दूसरे को बाहों में थामे हुए खड़े थे। तभी रूम का कैमरा ऑन हुआ। दूसरी तरफ से उन्हें गौतम और आदित्य देख रहे थे। इस वक्त गौतम के चेहरे के भाव सख्त थे। वो आदित्य पर चिढ़ते हुए बोले, कैमरा बंद करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। वो हमारे कितने भी काम के क्यों ना हो, हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ये दोनों नॉर्मल कपल की तरह बस बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी खुशखबरी के बाद इन्हें भी अपना प्राइवेट स्पेस चाहिए होगा। हमें इन्हें टाइम देना चाहिए, आदित्य ने नरमी से कहा। लेकिन मुझे किसी को टाइम नहीं देना। मैंने उनके सामने कुछ कहा नहीं क्योंकि वो दोनों ही जिद्दी हैं, हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। तुम इशिका के बच्चे पर एक्सपेरिमेंट की तैयारी करो। जो गलती हमने ईशानी की प्रेगनेंसी में की थी, वो हम इशिका के मामले में नहीं कर सकते हैं, गौतम ने ऑर्डर दिया। लेकिन ये गलत है। अगर हमारी जल्दी एक्सपेरिमेंट करने की वजह से बच्चे को कुछ हो गया तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, आदित्य ने घबरा कर कहा। हालांकि वो भी यही काम करता था, पर ना जाने क्यों उसे इशिका के साथ एक अपनापन महसूस होता था। शायद इसकी वजह ये थी कि वो राधिका की बेटी थी। गौतम ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, तुम्हारे इमोशनल बिहेवियर की वजह से आज हमें छुप कर रहना पड़ रहा है। उस लड़की को कुछ नहीं होगा। याद है, अंजलि चौहान की प्रेगनेंसी में भी एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन आज भी वो जिंदा है और खुशकिस्मती से काफ़ी स्मार्ट भी। उस मामले में अंजलि के बच्चे को कुछ हो भी जाता तो उसे या किसी को फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम बेफिक्र थे। अगर इशिका को कुछ हुआ तो, आदित्य अपनी बात पूरी करने से पहले ही रुक गया। उसने बिना कुछ कहे नामे सिर हिला दिया था। वो इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अगर कुछ हो भी गया तो वो वापस प्रेग्नेंट हो जाएगी। अगर उसकी जेनेटिक बीमारी को इग्नोर कर दिया जाए तो वो लड़की काफ़ी हेल्दी है, फिजिकली भी स्ट्रांग लगती है। अब मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, जाकर आगे की तैयारी करो क्योंकि आगे का काम तुम्हें ही करना है, गौतम ने गुस्से में कहा और फिर जबरदस्ती आदित्य को वहां से बाहर भेज दिया था।
गौतम की बात मानते हुए मजबूरन आदित्य को उनकी बताई एक्सपेरिमेंट के लिए तैयारी करनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ इशिका इस वक्त अभिमन्यु के साथ अपने कमरे में थे। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। वो दोनों एक झटके में एक दूसरे से अलग हो गए। अंदर आ जाइए, इशिका ने तेज आवाज में कहा। दरवाजे की दूसरी तरफ राधिका श्रुति के साथ खड़ी हुई थी। इशिका की आवाज सुनने के बाद राधिका अंदर आई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। रूम के अंदर आते ही उसने इशिका को एक नज़र देखा और फिर उसके गले लग गई। इशिका को वहां आए हुए दो दिन होने को आए थे। इस बीच राधिका से उसकी एक बार मुलाकात हुई थी, वो भी कुछ खास नहीं गई थी। अब अचानक राधिका उसके पास आई और उसे गले लगा लिया तो इशिका की आंखों में आंसू आ गए। मैंने आपको बहुत मिस किया, इशिका ने भारी आवाज में कहा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। जिस बच्चे से मैं कभी मिली ही नहीं हूं, उसके लिए मैंने अपनी उस बच्ची का दिल दुखा दिया जो मेरी नज़रों के सामने ही पड़ी हुई थी। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। तभी मेरी एक बेटी को चुरा लिया गया तो दूसरे को बदल दिया गया, राधिका ने रोते हुए कहा। इशिका तुरंत उसे अलग हुई और उसके आंसू साफ करके कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। पहले सच हमारे सामने नहीं आया था, पर फिर भी मैं मालविका की बेटी हूँ ये जानने के बाद भी आपने मेरा पूरा ध्यान रखा था। कोई भी अपनी सौतन की बेटी को इतने प्यार से नहीं रख सकता है, राधिका ने गहरी सांस ली और उसकी बात पर सिर हिलाया। वो कुछ पल रुककर बोली, ये तुम्हारी जिंदगी का अहम मोड़ है, तुम माँ बनने वाली हो। जो गलती मैंने की वो तुम मत करना, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। इशिका, हम यहाँ से निकल जाएंगे, बस प्लीज़ मुझ पर यकीन कीजिए, इशिका ने जवाब दिया। राधिका सच्चाई अच्छे से जानती थी कि एक बार मर्चेंट फैमिली के कैद में आने के बाद निकलना इतना आसान नहीं था। फिर भी इशिका का दिल न दुखे, इसलिए उन्होंने मुस्कुराकर उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया था। वहीं इशिका को भी अच्छा लग रहा था कि अब राधिका नॉर्मली उससे मिल रही थी, उसे उस पर यकीन भी था। गौतम मर्चेंट ने इशिका के अजन्मे बच्चे पर एक्सपेरिमेंट की तैयारी करने के लिए आदित्य को लगाया था। वो लगभग एक हफ्ते में पूरी तरह कंप्लीट कर चुका था। आज इशिका को एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया जाना था। उन्हें यही कहा गया था कि इशिका की इनिशियल चेकअप होने वाले हैं ताकि उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल रहे। इस टाइम पीरियड में गौतम और पूरी मर्चेंट फैमिली ने इशिका के साथ अच्छा बिहेव किया था ताकि उन्हें उन पर यकीन करने में दिक्कत ना हो। इशिका अभिमन्यु के साथ लैब की तरफ बढ़ रही थी। अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर दबी आवाज में कहा, तुम कुछ भी कहो पर मुझे अभी भी इन पर यकीन नहीं है। हम थोड़ा वेट और कर लेते हैं, यहाँ से निकालकर सारे टेस्ट करवा लेंगे। यकीन तो मुझे भी नहीं है, पर दिशांक और बाकी लोगों के आने से पहले हमें नॉर्मल रिएक्ट करना होगा। इन्हें जरा सा भी शक हुआ तो ये हमें कहीं और भी लेकर जा सकते हैं, इशिका ने जवाब दिया। उसका डर भी जायज था, वो पहले से मुसीबत में फंसे थे। वहीं लैब के अंदर आदित्य और गौतम खड़े हुए थे। गौतम ने आदित्य से पूछा, सब तैयार है ना? हाँ, पर पहले ही सोच लीजिए, मैंने अंजलि से भी यही कहा था कि अगर एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो बच्चे की जान जा सकती है, इसका इशिका की हेल्थ पर भी असर हो सकता है। अभी अभी उसका इन्फ्यूजन हुआ है, वो थोड़ी वीक है, आदित्य ने परेशान आवाज में कहा। कहा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारी सब्जेक्ट के अलावा और कुछ नहीं है। बाकी अगर गड़बड़ तुम्हारे बिहेवियर की वजह से हुई तो अच्छा तो तुम्हारे साथ भी नहीं होगा, गौतम ने पहले ही उसे वार्निंग देते हुए कहा। वो दोनों बातें कर रहे थे, इस बीच अभिमन्यु और इशिका वहां पर पहुंच चुके थे। गौतम ने उन्हें देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी और फिर आदित्य को एक्सपेरिमेंट शुरू करने का इशारा किया। इशिका और अभिमन्यु इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि जल्दबाजी के चक्कर में गौतम मर्चेंट इतना पागल हो जाएगा कि वो आज ही इशिका के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर देगा।